नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दक्षिण अफ्रीका के साथ कोलकाता में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की स्थिति मजबूत। दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप में भारत ने अमेरिका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह ने महिलाओं की पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और फिडे शतरंज विश्व कप में अर्जुन एरिगेसी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम क्रिकेट से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में भारतीय टीम ने 189 रन बनाए। आइए सुनते हैं आज के दिन का हाल।
केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर ने दूसरे दिन सधी शुरुआत करते हुए दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। राहुल ने सर्वाधिक 39 रन की पारी खेली। पारी के दौरान राहुल ने टेस्ट मैच में 4000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। उप कप्तान ऋषभ पंत ने भी 24 गेंद पर 2 छक्कों की मदद से 27 रन बनाए। ऋषभ पंत ने पारी के दौरान वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट करियर में भारत की ओर से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। भारत को पहली पारी में केवल 30 रन की बढ़त मिली है। पूरी टीम 189 रन पर ही सिमट गई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में तकलीफ के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने केवल 18 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 93 रन बना लिए थे। कप्तान टेम्बा बभुमा 29 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। जडेजा भारतीय सरजमी पर 250 विकेट हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। कुलदीप यादव ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
मनोज जी, इस मुकाबले में तो लगता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स थे सब भारतीय खिलाड़ियों ने हासिल किए। केएल राहुल ने 4000+ रन बना लिए, रविंद्र जडेजा ने भी 4000 रन से ज्यादा स्कोर कर लिया और ऋषभ पंत ने भी सबसे ज्यादा छक्के लगाने के कारनामे को अपने नाम कर लिए वीरेंद्र सहवाग को छोड़ते हुए।
जी हाँ, बिल्कुल, रिकॉर्ड तो देखिए जी बनते ही टूटने के लिए हैं और भारतीय खिलाड़ियों ने वाकई अपना जज्बा दिखाया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी मुश्किल पिच पर, एक ऐसी पिच पर जब आप कीर्तिमान बनाते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। अब आप देखिए कि जहां 2 दिन में 27 विकेट गिर गए हों, जहां केएल राहुल के रूप में जो हाईएस्ट स्कोरर है वो 39 रन है, महज उनके 39 रन, तो इस मैच के सर्वाधिक स्कोरर है वो। और इसके अलावा 4 स्पिनर्स, मैंने तो कभी नहीं सुना भाई, ईडन गार्डन के मैदान पे 4 स्पिनर को टीम उतारती हो, तेज गेंदबाजों के लिए जाना जाता है ये मैदान। लेकिन यहाँ सब कुछ देखिए बहुत ही इच्छा उम्मीद के बहुत ही विपरीत हुआ। पिच एक तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट थी और दूसरी तरफ से पिच देखें तो उसमें स्पिन भी था, शार्प टर्न था, उछाल था और उछाल से आज कई विकेट भी गिरे। जैसे आज आप वियान मुल्डर का विकेट देखें, टोनी डी जॉर्जी का विकेट देखें, और वो भी कोई तेज गेंदबाजों की उछाल पर नहीं, तेज गेंदबाजों की उछाल पर निश्चित तौर पर ऋषभ पंत जरूर आउट हुए, लेकिन ये तो जडेजा के शिकार बने हैं। तो इसका मतलब है कि यहां विकेट को समझना, विकेट के हिसाब से चलना, स्ट्रेटेजी बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा टिकना वो भी बहुत आत्मघाती है, क्योंकि ये विकेट ऐसा है कि यहां पर आप कमजोर गेंद का इंतजार कीजिए और उसको मत बख्शिए, उस पर रन बनाइए, यही एक सही रणनीति है इस मैदान पर।
और बिल्कुल जैसे आपने बताया कि एक एंड से कोई भी टर्न या बाउंस मिल नहीं रहा था और दूसरा एंड से ऐसा लग रहा था कि खेलना ही मुश्किल है, उसी तरीके से अनइवन बाउंस लगातार हमें देखने को मिला, पफ अप डस्ट बार बार वो उड़ रहा था जिसके कारण बल्लेबाजों के माइंड में वो दुविधा हो रही थी कि कौन सी बॉल ऊपर जाएगी, कौन सी बॉल नीचे जाएगी। और ऐसे में जो प्रदर्शन केएल राहुल ने किया, इवन इस मैच में टेम्बा बभुमा उनके जो कप्तान है, महज वो अंक तालिका में या फिर टेबल में 29 रन ही दिखते हैं, लेकिन वो काफी कारगर हैं।
बिल्कुल कमिटमेंट के साथ खेले हैं, आपने अपना जज्बा दिखाया है बल्लेबाजों में, जैसे केएल राहुल ने बल्लेबाजी की या जैसे आपने अभी बभुमा का नाम लिया, ऐसे में रविंद्र जडेजा का नाम लेना चाहूंगा कि जडेजा ने जिस तरह से, जिस अंदाज में गेंदबाजी की, अमूमन देखा होगा आपने ये विकेट पर जो है ना रन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इनकी गेंदबाजी बिल्कुल अलग तरह की धारदार गेंदबाजी थी जिसमें विकेट पर उन्होंने ज्यादा अटैक किया विकेट चटकाने की उन्होंने कोशिश की, माइंडसेट उनका बिल्कुल बदला हुआ था। और इसके अलावा एक ही जगह पर जो गेंद डालने का जो जज्बा होता है टेस्ट क्रिकेट में, टेम्परामेंट का उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया। और कुछ एक मौकों पर जरूर ऐसा देखने को मिला कि बल्लेबाज के हिसाब से उन्होंने अपनी लेंथ में बदलाव किए हैं, लेकिन अमूमन उनका एक ही जगह पर एक ही स्पॉट पर एक ही लेंथ और एक ही दिशा पर वो गेंदबाजी करते रहे, इसी का उन्हें पारितोषिक मिला। और बल्लेबाज को उन्होंने बैकफुट पर ज्यादा खिलाया और ये भी उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बना साउथ अफ्रीका के लिए।
जी, और एक तरफ जिस तरीके का पिच है उसमें जैसे आपने बताया कि केएल राहुल सर्वाधिक 39 रन बनाए उन्होंने, ऐसे में जो बल्लेबाज जो विस्फोटक बल्लेबाजी करते जैसे ऋषभ पंत, ऐसे में साउथ अफ्रीका ने डेवाल ब्रेविस को मिस किया होगा क्योंकि वो उसी लय में खेलते हैं। बिल्कुल
ब्रेविस को मिस किया होगा, रबाडा को नहीं खिलाया, मुझे तो ये भी बड़ा आश्चर्य हुआ जो कि पाकिस्तान में बहुत उम्दा प्रदर्शन करके लौटे हैं। लेकिन फिर भी वहां पर मैं समझता हूं कि उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है। स्कोर अभी 93/7 है और अगर ये कहीं लक्ष्य 120-125 तक पहुंच गया तो यकीनन भारत को भी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं इस मैच में। वो बात दूसरी है कि आप 7 विकेट गिर गए हैं तो आप काफी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन यही अगर 4 विकेट या 5 विकेट गिरे होते, कोई रिकॉग्नाइज बल्लेबाज वहां पर क्रीज एक जोड़ी टिकी हुई होती तो इस पिच पर वाकई 125-150 रन बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है।
जी, और क्रिकेट से अब हम चलते हैं महिला क्रिकेट की ओर। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने अमेरिका को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 60 रन ही बना सकी। भारत ने चौथे ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से सिमरनजीत कौर को 12 गेंद पर नाबाद 31 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार जबरदस्त प्रदर्शन रहा है और डोमिनेट करके खेला है खिलाड़ियों ने।
जी बिल्कुल, अच्छी बॉलिंग अगर आप करते हैं और उसके बाद शार्प फील्डिंग करते हैं, क्योंकि फील्डिंग तो किसी भी तरह के क्रिकेट में काफी मायने रखती है क्योंकि उससे गेंदबाजों का मनोबल भी बढ़ता है उस फील्डिंग से। लेकिन अगर आप दृष्टि बाधित हैं और वहां पर आप शार्प फील्डिंग कर रहे हैं और जो पूरी तरह से जो बीच में कुछ प्लेयर हैं जो पूरी तरह से जिन्हें दिखाई नहीं देता वो अगर गिरकर बॉल की आवाज को सुनकर डाइव लगाते हैं तो उसके मजा कुछ और ही होता है। यहां कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अब रविवार को कोलंबो में पाकिस्तान से खेलना है और मजा आएगा उस मैच में भी।
जी बिल्कुल। और उधर ICC ने आज दुनिया भर में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी की शुरुआत की है। ये प्रतियोगिता बैंकॉक में 20 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और आज IPL रिटेंशन का अंतिम दिन था। आगामी IPL के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने रिटेंड खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे, वहीं भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी भी IPL खेलते हुए नजर आएंगे। CSK ने संजू सैमसन को टीम में शामिल किया, वहीं रविन्द्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रेड हुए। तो जो प्रशंसक है IPL के उनके लिए तो ये काफी बेहतरीन खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी फिर से एक बार नजर आएंगे खेलते हुए।
लेकिन एक बार शक जरूर ऐसा हुआ था जब संजू सैमसन को इन्होंने ट्रेड किया था, राजस्थान रॉयल्स से अपनी टीम में शामिल किया जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और महेंद्र सिंह धोनी भी क्योंकि विकेट कीपिंग करते हैं, तब ऐसा जरूर लगा था एक क्षण कि शायद महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में ना खेलें, किसी और भूमिका में वो दिखाई दें। तो अब जाहिर सी बात है कि अब एक नए विकेटकीपर की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि कुछ एक विकेटकीपर हैं लेकिन संजू सैमसन जैसा तजुर्बा बाकी खिलाड़ियों के पास नहीं है, तो उनको टीम में शामिल करने के कुछ वाकई मायने हैं। ये दूरगामी योजना का हिस्सा है। आने वाले समय में बिल्कुल जिसे कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी उनको तैयार करेंगे संजू सैमसन को। और बाकी जो रिटेंशन में जो कुछ बड़े फैसले हुए हैं, जैसे आप सोच भी नहीं सकते थे कि लखनऊ सुपर जायंट्स का भी रवि विश्नोई जैसे खिलाड़ी को बिल्कुल खारिज कर देगा और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी को जो है रिटेन नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से पथिराना, चेन्नई सुपर किंग्स और पथिराना एक दूसरे के पर्याय बन गए थे, उनका जो स्लिंगिंग एक्शन हो चाहे उनकी यॉर्कर कराने की क्षमता हो उनको टीम में जो है रिटेन नहीं किया गया है। आंदेर रसल की चलो बात समझ में आती है कि उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था कि KKR ने उनको नहीं रखा, लेकिन जोस इंग्लिश उनको जो है रिटेन नहीं किया गया पंजाब किंग्स की तरफ से, यह भी बड़ा चौंकाने वाला फैसला लगा। तो कुछ एक फैसले रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो कुछ खिलाड़ी बहुत महंगे थे उनसे पिंड छुड़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि वेंकटेश अय्यर का कोई दोष नहीं था, पिछले सीजन में कई मैच उन्होंने जिताए थे। पिछला सीजन हालांकि उतना अच्छा नहीं गया लेकिन बहुत महंगा होना इनके खिलाफ गया। इसी तरीके से विदेशियों को रिलीज ज्यादा किया गया, उम्रदराज खिलाड़ियों से पीछा छुड़वाया गया, चाहे आंद्रे रसेल हो, फाफ डू प्लेसी हो, क्विंटन डिकॉक हो, इन सबको रिलीज कर दिया गया।
जी, अब खिलाड़ी नए फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट से चलते हैं निशानेबाजी की ओर। काहिरा में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत कुल मिलाकर 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन 10 स्वर्ण पदकों के साथ पहले और कोरिया 6 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मनु भाकर को तो प्रचलित है, सब लोग जानते ही, लेकिन ईशा सिंह ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इस चैंपियनशिप में भी उनका ये पहला पदक है व्यक्तिगत।
देखिए, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा जैसे मनु भाकर का आपने जिक्र किया, वो उनकी कोई पसंदीदा इवेंट है भी नहीं
जी,
लेकिन वो फाइनल में पहुंची, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और ईशा का 5वां नंबर था, इनका 6ठा नंबर था फाइनल में पहुंचने के लिए। और फाइनल में पहुंचने के बाद जो है, जब 7वीं सीरीज के बाद 23 अंक के साथ ये बराबरी पर थे, और उसके बाद जो है, जो मनु भाकर ने जो एक मूलभूत गलती की, दो गलतियां की, दो शॉट्स के बाद वो बाहर हो गई, और ईशा जो है बिल्कुल चमकती रही, लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही, और आलम यह था कि चीन और कोरिया के बाद इन्हें तीसरा स्थान हासिल हुआ
जी। चलते हैं शतरंज की ओर। फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने आज 2 बार के विश्व कप चैंपियन लेवोन ओरोनियोन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पेंटाला हरिकृष्णा ने 5वें राउंड में जोस मार्टिनेज से दूसरा क्लासिकल मुकाबला भी ड्रॉ किया। टाई ब्रेकर के लिए मुकाबले कल खेले जाएंगे। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी फीडे शतरंज विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने शनिवार को अरपोरा गोवा में 2 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लेवोन अरोनियन को काले मोहरों से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। हरिकृष्णा, जो अर्जुन के अलावा वर्ल्ड कप के 5वें चरण में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ने जॉस मार्टिनेज के साथ अपनी दूसरी क्लासिकल बाजी भी ड्रॉ की। कल उनके बीच पहली बाजी भी ड्रॉ रही थी। अब यह जोड़ी रविवार को टाई ब्रेक्स में आमने सामने होगी। निखिल उपाध्याय, फॉर स्पोर्ट्स, कैम फ्रॉम पणजी।
भारत के लिए महज अर्जुन एरिगेसी और पेंटाला हरिकृष्णा ही बचे हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है इस टूर्नामेंट में।
जी हाँ, बिल्कुल। पी हरिकृष्णा जो कि काफी हद तक भारतीय परिदृश्य से बाहर हो गए थे, शादी हुई, उसके बाद ये पराग्वे में रहने लग गए, और उसके बाद आप उतरते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और अपना पुराने परफॉर्मेंस को दोहराते हैं। अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो 11 चेस ओलंपियाड में भारतीय दल का जो है प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो ये एक उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी एरिगेसी तो आज की एक नई सनसनी है ही
जी। शतरंज से चलेंगे बैडमिंटन कोर्ट की ओर। कुमामोतो मास्टर्स जापान बैडमिंटन प्रतियोगिता में केंता निशिमोतो ने सेमीफाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को हराया। इससे पहले कल लक्ष्य सेन ने पूर्व चैंपियन सिंगापुर के लोह किन यू को 21-13, 21-17 से शिकस्त दी थी। इस टूर्नामेंट में हालांकि अच्छा प्रदर्शन रहा लक्ष्य का, लेकिन अमूमन हम ये देखते हैं कि वो बड़े खिलाड़ियों को ऐसे प्रतियोगिताओं में पराजित करते हैं, लेकिन वो कभी कप जीत नहीं पाते।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इंडोनेशियाई ओपन में भी हमने देखा, वहां भी ये इसी निशिमोता से हारे थे, यहां भी यहां पराजित हुए। लेकिन वहीं अगर आप अन्य खिलाड़ियों की बात करेंगे, अन्य टूर्नामेंटों की अगर बात करेंगे, तो वहां पर इन्होंने क्रिस्टी हो, जोनाथन क्रिस्टी हो, उनको ओलंपिक में भी हराया था, जहां भी हराया इस टूर्नामेंट में, यानी हारने से पहले एक बड़ा धमाका ये जरूर करते हैं
जी। उधर कुश्ती में भारतीय कुश्ती महासंघ ने आज ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत और जूनियर पहलवान नेहा सांगवान पर जारी निलंबन को हटा लिया है। इन दोनों पहलवानों को इस वर्ष की शुरुआत में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ज्यादा वजन के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। अमन सहरावत ने पहले भी पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अमन सहरावत जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जगरेब में हुई थी क्रोशिया के शहर में, वहां पर इनका वजन बढ़ गया था। इसी तरह से नेहा सांगवान की बात करें तो उनका अंडर 20 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो बुल्गारिया में आयोजित की गई थी, वहां इनका वजन बढ़ गया था, उससे काफी परेशानी हुई। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि एशियाई खेलों से पहले अमन सहरावत जो है पूरी तरह तैयार है, और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद 2 अलग अलग प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीते हैं, जगरेब ओपन ग्रां प्री में भी और तुर्की में यासर डोगू अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है, जो उनके कंसिस्टेंसी को दिखाता है
जी। और जाते जाते श्रोताओं, आपको बता दें FIH पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में टीम की कप्तान रोहित संभालेंगे। यह प्रतियोगिता 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरई में खेला जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।